श्री विद्यारण्य स्वामी जी महाराज द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के ध्यानदीप नामक नवम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण के 80वें श्लोक का विचार हम लोगों को करना है। ये बताया गया था 78वें श्लोक में कि स्वरूप में अभिमान की अभिव्यक्ति तक उपासना करें, स्वरूप में फिर अभिमान को हमेशा धारण करके रखें। कब तक? तो मृत्यु तक। तो क्यों स्वरूप अभिमान को मृत्यु तक धारण करके रखना है? इस प्रकार की आशंका का समाधान करने के लिए 80वां श्लोक है। इसलिए 80वें श्लोक के अवतरण में लिखा गया कि आमृति धारणे निमित्तम दर्शयन अनिच्छायम न निवर्तयेत इति उक्तात् बोध धर्मात् वैलक्षण्यम आह। मृत्यु पर्यंत अहम अभिमान को धारण करने का निमित्त बताते हुए जो पहले बोध में एक उपासना का वैलक्षण्य बताया था कि प्रमाता की अनिच्छा बोध का निराकरण नहीं कर सकती, तो प्रमाता की अनिच्छा से बोध में अनिवर्त्यत्व है, वो होकर रहेगा। यदि प्रमाण और प्रमेय का संसर्ग हुआ तो प्रमा होगी। प्रमाता चाहेगा कि प्रमा न हो तो उसके चाहने से रुकेगी नहीं, चाहने से या न चाहने से। लेकिन उपासक की इच्छा के अधीन होगी उपासना, प्रमा प्रमाता की इच्छाधीन नहीं है। प्रमात्र इच्छानाधीनत्व है बोध में, और उपासना में उपासक इच्छाधीनत्व है। ये वैलक्षण्य दिखाया जा रहा है कि अनिच्छा यन्न निवर्तयेत। इस पाद के द्वारा जो बताया गया था बोध में एक वैलक्षण्य, उससे उपासना में विलक्षणता बताई जा रही है उस धर्म से। तो 80वें श्लोक का उच्चारण कर लें। पुरुषस्येच्छया कर्तु मकर्तुम कर्तुमन्यथा शक्योपास्ति रतो नित्यं कुर्यात् प्रत्यय संततिम्। तो ये कहते हैं तो पुरुषस्य इच्छया उपास्ति कर्तुम शक्या, ऐसा अन्वय करिए। और पुरुषस्य इच्छया उपास्ति अकर्तुम शक्या, और पुरुषस्य इच्छया उपास्ति अन्यथा कर्तुम शक्या। ये उपासना अनुष्ठेय साधन है, और जो अनुष्ठेय होता है वो पुरुषाधीन होता है, और जो पुरुषाधीन साधन है वह पुरुष की इच्छा से पुरुष शास्त्र ने जैसा बताया ऐसा भी उसे कर सकता है। शास्त्र प्रतिपादित जो अनुष्ठेय साधन का स्वरूप है, अनुष्ठान प्रकार है, वैसा ही अनुष्ठान उसका कर सकता है। तो ये हुआ कि उपासक की इच्छा से उपासना का कर्तुम शक्यत्व, जैसा शास्त्र ने उपासना करने के लिए बताई वैसी ही कर रहा है निर्गुण की। और इच्छा नहीं है, पंचदशी के ध्यान दीप को पढ़ लिया इन श्लोकों को, लेकिन निर्गुण की उपासना करने की इच्छा नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इन शब्द आनंद आदि विधेय गुण तथा निषेध्य गुण कौन से हैं, अस्थूलत्वादि निषेध्य गुण, इनसे परिलक्षित हुआ जो निर्विशेष परमात्मा है उस परमात्माकार वृत्तियों का निरंतर प्रवाह आवर्तन रूप उपासना करने की इच्छा नहीं है तो नहीं भी कर सकता है, तो अकर्तुम शक्य। पुरुष शब्द से लेना उपासक को, तो उपासक अपनी इच्छा से इस परमात्माकार वृत्तियों का आवर्तन रूप उपासना को करना नहीं चाहता तो नहीं भी कर सकता, अकर्तुम शक्य। और वो चाहता है कि जैसा शास्त्र ने बताया ऐसा नहीं करना है, थोड़ा अलग करना है, प्रकारांतर से करना है, तो वैसा भी वो कर सकता है, अन्यथा कर्तुम उपास्ति शक्य। तो जो साधन साधक की इच्छा से शास्त्रानुसार करना संभव हो, न करना संभव हो, अन्यथा करना संभव हो, वो अनुष्ठेय साधन हुआ, वो बोध नहीं है, उपासना है। और जिसे प्रमाता अपनी इच्छा से बदल नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता, जैसा प्रमाण निर्दोष है और प्रमेय निर्दोष है, तो प्रमेय का जैसा स्वरूप है ऐसा ज्ञान होकर के रहेगा, प्रमाता की इच्छा से अन्यथा नहीं होगा और नहीं होगा ऐसा भी नहीं, होगा और अन्यथा नहीं होगा, जैसा प्रमेय है ऐसा ही ज्ञान होगा। ये उपासना और बोध में विलक्षणता हुई ना, एक पुरुष इच्छा अनधीन है और एक पुरुष इच्छा अधीन है। पुरुष इच्छा अधीन है उपासना, पुरुष इच्छा अनधीन है ज्ञान, ये भी वैलक्षण्य है, अंतर है ज्ञान और उपासना में। ज्ञान और उपासना में क्या अंतर है ये पूछा जा रहा है ना, तो बताया पहला अंतर तो ज्ञान पुरुष वस्तु तंत्र है, उपासना पुरुष तंत्र है। और भी वैलक्षण्य बताते हुए ज्ञान का साधन बताया विचार, और ज्ञान का पुरुष इच्छा अनधीनत्व तथा फल बताते हुए कहा गया कि वह उत्पन्न हो करके अपने उत्पत्ति के साथ साथ अज्ञान को निवृत्त करता है, कृतकृत्यता की अनुभूति होती है, और फिर वह प्रारब्ध का फलोपभोग करते हुए ज्ञानी जीवन मुक्ति का अनुभव करता है और प्रारब्ध का क्षय की प्रतीक्षा करता है, ये ज्ञान का फल बताया है। और उपासना का ज्ञान की अपेक्षा वैलक्षण्यांतर बताने के लिए ये कहा गया कि उपासना तो होती है श्रद्धा से। आचार्य ने उपास्य का स्वरूप बता दिया और आचार्य तथा शास्त्र वचन पर आस्था विशेष होने से शास्त्र में संशय विपर्यय नहीं और आचार्य में भी श्रद्धा होने से संशय नहीं, तो उपासना करेगा। प्रमेय विषय संशय उसको नहीं है, तो सीधा ध्यान करेगा वो जैसा स्वरूप बताया उसके आकार की वृत्तियों का आवर्तन। तो उपासना का हेतु हुई श्रद्धा, ज्ञान का हेतु हुआ विचार, ये हेतु तो वैलक्षण्य दोनों में हुआ, और ज्ञान पुरुष इच्छा अनधीन है, उपासना पुरुष इच्छाधीन है, ये दूसरा वैलक्षण्य। ज्ञान का फल है कृतकृत्यता की अनुभूति, जीवन मुक्ति इत्यादि, उपासना के फल के विषय में आगे बताएंगे। तो ये हुआ कि पुरुष की इच्छा से उपासना का शास्त्रानुसार करना न करना या प्रकारांतर से करना संभव है। इसलिए क्या होगा कि अतः, उत्तरार्ध में एक अतः शब्द है ना तीसरा, उसका अर्थ है उपासना पुरुष की इच्छा के अधीन होने से। उपासना में उपासक इच्छाधीनत्व होने से, यह अतः शब्द का अर्थ है। उपासक को कल्याण चाहने वाले अधिकारी को चाहिए कि वह निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति का आवर्तन करता रहे मृत्यु तक। ये कहते हैं अतो नित्यम कुर्यात् प्रत्यय संततिम, प्रत्यय शब्द का अर्थ है ब्रह्माकार वृत्ति और संतति का अर्थ है प्रवाह, इसी का नाम है उपासना, इसलिए प्रत्यय संतति शब्द का अर्थ निकलेगा उपासना। नित्यम कुर्यात् याने हमेशा करता रहे, क्योंकि इच्छा के अधीन है ना, और कब इच्छा अंतकरण में यदि तमह प्रबल हो जाए तो प्रमाद के कारण न करने की हो जाए, रजोगुण हो जाए तो भी निर्विशेष की उपासना से वो रोकने की इच्छा हो सकती है उस उपासना को, अन्यथा करने की उपाय हो सकती है। इसलिए हमेशा प्रयत्न पूर्वक यही करें प्रत्यय का आवर्तन रूप उपासना। प्रत्यय संततिम शब्द का अर्थ है उपासना, कुर्यात् करें, और कुर्यात् का विशेषण है नित्यम, हमेशा करें पारमार्थिक मृत्यु होने तक। तो पारमार्थिक मृत्यु होती है, आत्यंतिक प्रलय को कहा जाता है पारमार्थिक मृत्यु, वो होता है साक्षात्कार से, मतलब साक्षात्कार तक ये करते हैं। जब तक विपरीत भावना कारक अवस्था में है तो कभी वो विपरीत भावना न करने की इच्छा चित्त में उत्पन्न करके उपासना को रोक भी सकती है, अपने विरोधी को संवर्धित करने वाली। विपरीत भावना का विरोधी है शुभ भावना, और उस शुभ भावना को, शुभ संस्कार को संवर्धित करने वाली जो निर्गुण की उपासना, उसे विपरीत भावना देखेगी कि मेरा शत्रु तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है उसका सामर्थ्य, तो उसे रोकने के लिए वो भी कुछ न कुछ खोजती रहेगी ना, तो देखेगी कि ये किसके अधीन है उपासना, मेरे विरोधी को सामर्थ्य देने वाली उपासना किसके अधीन है, उसको खोजेगी तो उसको मिलेगा निर्विशेष की उपासना को अपने अधीन रखने वाली इच्छा। तो ऐसी इच्छा उत्पन्न करेगी आपके अंदर वो विपरीत भावना कि निर्गुण की उपासना में प्रवृत्ति ही होने नहीं दे, तो फिर निर्गुण की उपासना नहीं होगी तो विपरीत भावना का विरोधी जो शुभ भावना है वो धीरे धीरे क्षीण होगा ना, तो विपरीत भावना का प्राबल्य फिर वैसा का वैसा रहेगा। विपरीत भावना तो चाहती है आपको संसार में बनाए रखना, संसार का ही सदस्य बनाए रखना। उन्हें चाहती कि आप संसार की नागरिकता छोड़ करके अलौकिक के नागरिक बन जाए। अलौकिक का नागरिक एक ही है परमात्मा, परमात्मा बन जाए, ये नहीं चाहती विपरीत भावना। इसलिए वो तो खोजती रहेगी ना, और उसको मिलेगा उपासना को अपने अधीन रखने वाले के रूप में आपके अंदर काम यानी इच्छा, और उस इच्छा को वह कैसे बढ़ाए आपके चित्त में, इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी विपरीत भावना। इसलिए देखना पड़ता है कि शत्रु कहां कहां हमें कमजोर करने के लिए ये करता है, सहायता मांगने के लिए जाता है, वहां भी दृष्टि रखी जाती है ना। तो ऐसी इच्छा ही न होने दें कि शास्त्र ने जैसी उपासना बताई वो नहीं करनी है, करने से रोकने वाली इच्छा न हो और अन्यथा करने की भी इच्छा न हो, अपितु जैसा शास्त्र कहता है निधिध्यासन करने के लिए उसी में लगाए रखने वाली ही इच्छा अंतकरण में रहे, इसका ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए कहा कि नित्यम कुर्यात। थोड़ी सी टीका है, टीका को देखिए कि उपास्ति ही पुरुषस्य यानी उपासकस्य इच्छया कर्तुम अकर्तुम अन्यथा यानी प्रकारांतरेण वा कर्तुम शक्या। जो उपासना है वह उपासक की इच्छा से शास्त्र ने जैसी बताई करने के लिए वैसी करना भी संभव है, न करना भी संभव है उपासक की इच्छा से, नहीं करने की इच्छा होगी तो, और अन्यथा करने की इच्छा हो जाएगी तो इच्छा के अधीन होने से अन्यथा करना भी, प्रकारांतर से करना भी संभव है उपासना को। लेकिन बोध में ऐसा नहीं है, वो जैसा प्रमेय होगा ऐसा ही ज्ञान होगा, अन्यथा या नहीं होगा ऐसा नहीं, अन्यथा नहीं होगा और नहीं होगा ऐसा भी नहीं, होगा ही, जैसा है प्रमेय ऐसा ही। वहां एक ही विकल्प है, विकल्पांतर नहीं है, या तीन तीन विकल्प है, उसमें से दो कहीं उदित न हो, प्रकारांतर और न करना रूप, इसकी सावधानी रखनी है। आगे कहते हैं कि अतः, जो एक अतः शब्द है ना उपास्ति के बाद में मूल श्लोक में, उसका अर्थ करते हैं टीकाकार की पुरुषस्य इच्छाधीनत्वात्, उपासना पुरुष की इच्छा के अधीन होने से। उपासनम सर्वदा कुर्यात्, नित्यम का अर्थ कर दिया सर्वदा, और प्रत्यय संततिम शब्द का अर्थ कर दिया उपासनम, मूल में है प्रत्यय संततिम, टीकाकार ने उसका अर्थ कर दिया उपासनम, मूल में है नित्यम शब्द, उसका अर्थ कर दिया सर्वदा, और कुर्यात् शब्द का पर्यायवाचक दूसरा कोई शब्द वो इससे कठिन ही हो सकता है, सरल नहीं हो सकता, यही सरल है, इसलिए इसका कोई पर्यायवाचक शब्द नहीं बताया टीकाकार ने। अब 81वें श्लोक की अवतरण टीका है, इसे देखिए। एवं सदा चिंतने किं भवति इत्यत आह, तो इस प्रकार हमेशा चिंतन करते रहने से क्या होगा, एक पूर्व श्लोक के चतुर्थ पाद में बताया गया कि अधिकारी को निर्गुण की उपासना हमेशा करती रहनी चाहिए, तो हमेशा निर्गुण की उपासना करते रहेंगे तो होगा क्या इससे, ये प्रश्न हुआ, इसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि निर्गुण की उपासना हमेशा करते रहने से आपके चित्त में शुभ संस्कार बलवान होगा, प्रबल होगा। और शुभ संस्कार बलवान हुआ इसका ज्ञापक क्या है? तो जो आपके चित्त में संस्कार बलवान होता है ना, सोने के बाद कभी फिर स्वप्न उसी प्रबल संस्कार वाले विषय का होता है। स्वप्न में भी जागृत अवस्था का जो प्रबल संस्कार है आपसे स्वप्न में भी वही कराता है। तो आपकी स्वप्न में भी उपासना होगी, स्वप्न में भी आप निर्विशेष ब्रह्म को ही मैं के रूप में चिंतन करते रहोगे, निर्विशेष ब्रह्म का। ये निरंतर उपासना करने से होगा, ये बताया जा रहा है। ये पूछा न कि एवं सदा चिंतने किम भवति, तो हमेशा निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते रहने पर किम भवति, क्या होगा? कहते जागृत में हमेशा करते रहोगे तो स्वप्न भी, स्वप्न में भी उपासक का ही स्वप्न आएगा कि हम स्वप्न में भी मुक्त होने की साधना ही कर रहे हैं। जो व्यक्ति स्वप्न में ज्यादा जो काम करता है, जागृत में जो ज्यादा काम करता है वही स्वप्न में भी करता हुआ दिखता है कि नहीं? तो कभी कभी स्वप्न में आता है कि नहीं कि सत्संग यहां तीसरे माले पे कर रहे हैं, इतना संस्कार प्रबल हुआ है कि नहीं? आया है स्वप्न में कभी? आता है? हाँ, तो आता है तो प्रबल है। उपासना, हम उपासना कर रहे हैं ध्यान बैठ करके निर्गुण की, अहम प्रत्याक निर्विशेष ब्रह्म मैं हूं इत्याकारक वृत्ति का आवर्तन कर रहे हैं, ये ऐसा स्वप्न आता है? आता है? अच्छा, आप तो तब तो आपकी मुक्ति में कोई संशय नहीं है, जब इस जन्म में मुक्त हो जाएंगे आप। तो ये कहते हैं 81वें श्लोक में कि वेदाध्यायी प्रमत्तो धीते स्वप्ने धिवासतः जपिता तु जपत्येव तथा ध्यातापि वासयेत। तो अप्रमत्त वेदाध्यायी, अप्रमत्त यानी प्रमत्त कहते हैं प्रमादी को, अप्रमत्त का अर्थ होगा प्रमाद रहित। बचपन में गुरुकुल में रह करके जिन वेदों का अध्ययन किया है, समावर्तन संस्कार होने के बाद विद्युतीय आश्रम में प्रवेश कर लिया, तो वेदों की पुस्तकें गुरुकुल में ही छोड़ करके नहीं आया कि दूसरे विद्यार्थी आएंगे और वो पढ़ेंगे, वही नहीं छोड़ा, वो साथ में ले आता है, क्योंकि वहां पर अपना कुछ पढ़ाते समय गलत प्रिंट हुआ है तो उसको सुधार करके रखता है ना, आचार्य ने जैसा बताया, और उसी का अभ्यास करने के लिए वो साथ में लाता है, जिस ग्रंथ से अध्ययन किया था वो ग्रंथ, और फिर रोज वो घर में वेदाध्ययन करता है, पाठ करता है वेद का जो पढ़ा है, और रोज रोज करते 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 जो काम आप रोज करते हो आपके अभ्यास में आ जाता है, वो शील बन जाता है, आपका स्वभाव बन जाता है। यहां वेदाध्यायी इसमें एक शील अर्थ में प्रत्यय हुआ है, वो इन प्रत्यय कहा जाता है, वेदाध्ययन ये है, उससे वो प्रत्यय होकर के वेदाध्यायी बना, मतलब वेदाध्ययन करना जिसका शील बन गया है, शील कहते हैं स्वभाव को। इतना वेद का पाठ करता जा रहा है रोज रोज, कभी खंडित नहीं होने देता है, तो स्वभाव बन गया। जब तक स्वभाव नहीं बना तब तक प्रमाद के कारण कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं करेंगे, इसलिए कहा कि अप्रमत्त। हाँ, अप्रमत्तेन वेधव्य, वो मुंडक उपनिषद में आएगा, प्रणो धनु शरोहात्मा ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते, अप्रमत्तेन वेधव्य शर्वत्तन्मयो भवेत। तो प्रमाद रहित होकर के ब्रह्म के प्रति इस ओंकार रूपी धनुष पर आत्मा रूपी शर को, बाण को रख करके छोड़ना है, वो भी निर्गुण की उपासना ही है। तो यहां पर भी यहां बताया जा रहा है कि प्रमाद रहित होकर के जो वेद अध्ययन करता रहता है, वेद का पाठ करता रहता है, वेदाभ्यास करता रहता है, तो उससे क्या होता है कि जिसका शील बन गया, स्वभाव बन गया, तो स्वप्न में भी वह वेद का पाठ करता हुआ अपने आप को देखता है। तो ज्यादा अभ्यास में जो साधन आ जाता है उस साधन का अनुष्ठान करते हुए अपने आप को स्वप्न में भी देखता है साधक। तो प्रमाद रहित वेदाध्यायी वेद पाठ स्वप्न में भी करता है, और कोई जप रूप साधन को अपनाता है, इतना जप करता रहता, हमेशा जप करता ही रहता, करता रहता है, जप करना उसका स्वभाव बन गया जागृत में, अप्रमत्त वो जपिता का भी विशेषण के रूप में अन्वय करना अप्रमत्त पद का जपिता के साथ। तो प्रमाद रहित होकर के जप करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो शील बन गया, उसका स्वभाव बन गया, तो फिर क्या होता है कि स्वप्न में भी जप करता हुआ अपने आप को देखता है। और जैसे वो वेदाध्यायी अपने आप को स्वप्न में वेद पाठ करता हुआ देखता है, जप करने वाला अपने आप को जप करता हुआ देखता है स्वप्न में भी, ऐसे जागृत में निरंतर निर्विशेष ब्रह्म मैं हूं इस वृत्ति का आवर्तन करने वाला साधक प्रमाद रहित आवर्तन कर रहा है, निरंतर हमेशा करता जा रहा है, तो हमेशा करता रहेगा तो शील बन जाएगा, स्वभाव बन जाएगा, और स्वभाव होगा इसकी पहचान है, ज्ञापक है कि स्वप्न में भी निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हुए अपने आप को देखेगा। ये यहां पर कहा कि जपिता तू जपत्ते व तथा, ये दो तो उदाहरण हो गए, और तथा ये दाष्टांत को बताने के लिए, तथा ध्याता, ध्याता यानी ध्यान करने वाला, जागृत अवस्था में प्रमाद रहित होकर के निर्गुण का ध्यान कर रहा है, तो वह भी क्या होगा कि वासयेत, तो स्वप्न में भी ध्यान करता हुआ प्रतीत होगा अपने आप को। जागृत में पहले निरंतर ध्यान करें, इतना शुभ संस्कार पुष्ट कर ले, दृढ़ कर ले, उसे अपना स्वभाव बना दे कि स्वप्न में भी वही उदित हो जाए। टीका को देखिए कि अप्रमत्तो वेदाध्यायी सदा अध्ययनशील, जपिता सदा जपशीलो। तो अप्रमत्त वेदाध्यायी का अर्थ हुआ हमेशा वेद का अध्ययन करना जिसका शील है, स्वभाव है, उसे कहा जाएगा अप्रमत्त वेदाध्यायी। और जपिता सदा, तो सदा जपशील, हमेशा जप करना जिसका स्वभाव है, तो क्या होगा उस साधना का संस्कार, वो साधन करने वाले के बुद्धि में दृढ़ हो जाएगा। तो अधिवास शब्द का अर्थ है प्रबल संस्कार, जो पूर्वार्ध में स्वप्ने अधिवासत, यहां एक अधिवास शब्द है ना, तो अधिवास शब्द का अर्थ है प्रबल संस्कार। तो स्वप्न में भी प्रबल संस्कार वशात अध्ययन वेदाध्यायी अध्ययन करता हुआ अपने आप को देखेगा। जप करने वाले के बुद्धि में जप करने का संस्कार प्रबल होगा, उस प्रबल संस्कार वशात वो अपने को जप करता हुआ पाएगा। ऐसे ध्यान करने वाला, ध्यान का संस्कार प्रबल होगा तो स्वप्न में भी अपने आप को ध्यान करता हुआ देखेगा। तो अधिवासत शब्द का अर्थ करते हैं दृढ़ वासनाया, प्रबल वासना हो गई, दृढ़ वासना हो गई, वासना यानी संस्कार। तो स्वप्नादिषु अध्ययनम जपम वा करोति, तो जिस साधन का संस्कार जागृत अवस्था में प्रबल है वही साधन स्वप्न में करता हुआ प्रतीत होता है। एवं उपासकोपि वासना दार्ढ्यात्, उपासक की भी उपासना की वासना यानी संस्कार जब दृढ़ होगा तो स्वप्नादो अपि ध्यायीत, तो स्वप्न में भी वो ध्यान करेगा। अब व्यासीवे श्लोक का अवतरण देखिए, स्वप्नादावपि ध्यानानुवर्तने कारणम आह, स्वप्नादि में भी ध्यान हो रहा है, उपासना हो रही है, इसका कारण बताया जा रहा है। कारण है वही वासना का दृढ़ होना। तो विरोधी प्रत्ययम त्यक्त्वा नैरन्तर्येण भावयन् लभते वासनावेशात् स्वप्नादावपि भावनाम्। तो विरोधी प्रत्ययम् त्यक्त्वा, विरोधी प्रत्यय माना जाएगा अनात्मा का, आत्मा का आत्म रूप से प्रत्यय, वो विरोधी प्रत्यय है। अनात्मा है पंचकोश कहो या शरीर त्रय कहो, शरीर कारण शरीर ये अनात्मा है। और इन अनात्माओं का आत्म रूप से जो प्रत्यय यानी वृत्ति, उसे कहा जाएगा विरोधी प्रत्यय। मैं मनुष्य हूं, मैं करता हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं मूढ़ हूं, मैं अज्ञानी हूं, ये सब प्रत्यय हैं अनात्मा देहादि को विषय बनाने वाले अंतकरण के वृत्ति विशेष, इनको कहा जाता है विरोधी प्रत्यय। किसके विरोधी? मैं ब्रह्म हूं, इस वृत्ति का आवर्तन ये ध्यान है ना, तो मैं ब्रह्म हूं इस वृत्ति का विरोधी प्रत्यय यानी वृत्ति माना जाएगा। किसको विरोधी किसको माना जाएगा? कि मैं मनुष्य हूं, मैं परिचिन्न हूं, मैं करता हूं इत्यादि को, ये विरोधी प्रत्यय है। और इन विरोधी प्रत्ययम त्यक्त्वा, प्रयत्न पूर्वक इन विरोधी प्रत्ययों को छोड़ करके हटाना है, त्यागना है। वो विपरीत भावना प्रबल होने से, कारक होने से स्वभावतः तो अहम वृत्ति अपने उदय के साथ साथ शरीर त्रय में से किसी न किसी को आलंबन करते हुए ही प्रकट होगी, लेकिन प्रयत्न से उस वृत्ति को उत्पन्न नहीं होने देना, वृत्ति को यानी अनात्मा शरीर आदि को विषय करने वाली वृत्ति को त्यागना है। अहम वृत्ति तो उत्पन्न हो लेकिन वह शरीर आदि विषयक न हो, ब्रह्म विषयक हो, उसका विषय बदलना है, वृत्ति का त्याग करने का अर्थ है। अभी अनात्मा विषयक थी, उसे आत्म विषयक बनाना है। तो विरोधी प्रत्यम त्यक्त्वा नैरंतरेण भावयेत, तो हमेशा ज्यादा से ज्यादा समय तक अहम् ब्रह्मास्मि इसी वृत्ति का प्रवाह निवातस्थ दीप ज्योति के तरह चलता रहे। निवात कहा जाता है ऐसे स्थान को जहां पर वायु समान गति से चल रही है, जिससे कि बत्ती को जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन पहुंचाने वाली वायु तो चल रही है, सर्वथा रुक जाएगी वायु तब भी बत्ती बंद हो जाएगी, नहीं जलेगी। तो बत्ती के जलने के लिए अनुकूल वायु वाला जो स्थान, और ज्यादा तेज वायु होगा तब भी बुझ जाएगी, और थोड़ा घट बढ़ रहा है तब भी वो हिलेगी डुलेगी, उसे हिलने डुलने देने वाला भी वायु न हो और जलती रहे इतना अनुकूल वो चलता रहे, और बुझाने वाला आंधी जैसा भी न हो, ऐसा स्थान उसे निवात स्थान कहते हैं। और उस निवात स्थान पर रखा हुआ दीप जैसे एकाकार चलता रहता है उसकी लौ, ऐसे ही विरोधी प्रत्ययों को त्याग करके मात्र अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्तियों का उस निवातस्थ दीप की ज्योति के तरह प्रवाह वो चलता रहे, तो माना जाता है नैरंतरीयेण भावयन, आप व्यवधान रहित अहम् ब्रह्मास्मि वृत्ति का आवर्तन रूप ध्यान कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, निध्यासन हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे शुभ संस्कार पुष्ट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बलवान होगा, दृढ़ होगा, और जैसे जैसे दृढ़ होगा ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार, शुभ संस्कार, तो कहते हैं फिर स्वप्नादावपी वासना वेशात भावनाम लभते, ऐसा उत्तरार्थ का अन्वय करिए। तो स्वप्नादौ अपि, तो स्वप्न में भी क्या होगा कि ये जो भावना यानी ध्यान लभते होता रहेगा, स्वप्न में भी ध्यान ही मैं कर रहा हूं ऐसा स्वप्न आएगा। क्यों, तो कहते वासना वेशात, वासना वेश का अर्थ है वासना की दृढ़ता, वासना यानी वो शुभ संस्कार, जागृत अवस्था में जो निरंतर ध्यान करते गए ना उससे प्रबल हुआ जो संस्कार वो वासनावेश कहलाता है, संस्कार पाटो कहेंगे टीकाकार। वासनावेश शब्द का अर्थ है संस्कार पाटो, संस्कार पाटो का मतलब दृढ़ संस्कार, ब्रह्म का मैं के रूप में दृढ़ संस्कार हुआ, उससे वह संस्कार आपको क्या करेगा कि स्वप्न में भी उसी का ध्यान कराएगा जिसका जागृत में कर रहे थे। स्वप्न में भी ध्यान होगा तो वासना वेशात स्वप्नादो अपि भावनाम, भावना का अर्थ है ध्यान उपासना, वो स्वप्न में भी होती रहेगी। हाँ वो तो होगा ही, आदि शब्द से वो सब लीजिए, सुखी दुखी तो तब होगा जब मन शरीर आदि में आएगा, सुखी दुखी जो मन है और उस मन में अहम वृत्ति आ जाएगी, तादात्म्य अभिमान करेगी, तब न सुखी दुखी होगा, निर्विशेष अपनी अहम वृत्ति का आलंबन बनेगा तो सुख दुख मन में आएंगे जाएंगे। दूसरे के सुखी दुखी होने से जैसे हम अपने आप को सुखी दुखी महसूस नहीं करते, ऐसे अपने कार्यक्रम संगात में आने वाले सुख दुखों से भी हम सुखी दुखी न हो। ये कब होगा? तो जितना दूसरों के कार्यक्रम संघात से हम अपने आप को अलग समझते हैं, उतना अपने कार्यक्रम संघात से भी अपने आप को अलग समझ लें। तो माना जाएगा कि उस समय अपने कार्यक्रम संघात के भी सुख दुख से आप प्रभावित नहीं हो रहे, असंग रह रहे हैं। वो होगा जब असंगता का संस्कार दृढ़ होगा। असंग तो ब्रह्म है, उसका मैं के रूप में संस्कार दृढ़ हो जाए तो ऐसा होगा। तो ये थोड़ी टीका है। टीकाकार दो शब्दों का अर्थ बता रहे हैं आपको श्लोक में, बाकी सब टीकाकार की दृष्टि में सरल शब्द हैं। दो शब्द का अर्थ इस श्लोक का अध्ययन करने वाले के लिए टीकाकार बताना आवश्यक मानते हैं। एक तो वासनावेश शब्द का अर्थ और दूसरा भावना शब्द का अर्थ। तो वासनावेशात का अर्थ कर दिया संस्कार पाटवात। संस्कार पाटो का मतलब संस्कार की प्रबलता, प्रबल संस्कार, संस्कार पाटो। और भावना यानी ध्यान। स्वप्नादि में भी होगा, जब जागृत अवस्था में ध्यान का संस्कार प्रबल होगा। तो अब 83वें श्लोक की अवतरण टीका को देखिए। ननु प्रारब्ध कर्मवशात विषयान अनुभवतः कथम नैरंतर्येण भावना सिद्धि इति आशंक्य आस्थातिशये सति विषय व्यसनीवत भावना सिद्धि स्यात् इत्याह। ये कह रहे हैं कि निरंतर उपासना करो, ध्यान करो, का मतलब अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति हमेशा चित्त में बनाए रखो। तो अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति चित्त में हमेशा यदि बनी रहेगी तो प्रारब्ध का फलोपभोग कैसे होगा? अहम ब्रह्मास्मि में तो ब्रह्म तो अभोक्ता है, उसको किसी प्रारब्ध का फल थोड़ी भोगना है। और वो जो अभोक्ता ब्रह्म है वो मैं हूं, ऐसा निरंतर अपने आप को समझने वाला फिर अपने प्रारब्ध का फलोपभोग कैसे कर पाएगा? और प्रारब्ध का फलोपभोग यदि होगा तो उसे पुण्य प्रारब्ध का फलोपभोग के रूप में मैं सुखी हूं ऐसा अनुभव करना पड़ेगा ना अपना। और पापात्मक प्रारब्ध का फलोपभोग करते समय मैं दुखी हूं ये अनुभव करना पड़ेगा। तो कर्म फल सुख दुख के अनुभविता को कहा जाता है भोक्ता, तब प्रारब्ध का फल उपभोग होगा। और मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं यह वृत्ति जिस समय बनेगी उस समय फिर अभोक्ता ब्रह्म मैं हूं यह वृत्ति चित्त में थोड़ी रहेगी। चित्त में तो एक समय एक ही वृत्ति रहती है। तो निरंतर ध्यान कैसे होगा? प्रारब्ध का फलानुभव जो कर रहा है उससे निरंतर ध्यान असंभव है। मैं तो बताओ कैसे करेंगे यदि संभव है तो? या तो निरंतर शब्द का मैं थोड़ा शिथिलता बरतो, इसमें थोड़ा संशोधन करो कि प्रारब्ध फलोपभोग के अनंतर फिर बीच वाले काल में उपासना करो, यह अर्थ निकलेगा। ऐसा करो, नहीं तो एक बार ही मैं अभोक्ता ब्रह्म भी हूं और उसी समय सुखी दुखी भी हूं, प्रारब्ध का फलोपभोक्ता भी हूं, ये दो वृत्तियां एक चित्त में कैसी युगपत होगी, ये समस्या है ना, ये पूछा जा रहा है कि ननु प्रारब्ध कर्म वशात विषयान अनुभवत कथम नैरंतरियन भावना सिद्धि, भावना यानी ध्यान, उसकी सिद्धि नैरंतरियन कैसे होगी। मतलब विरोधी वृत्तियों से व्यवधान रहित मात्र ब्रह्माकार वृत्ति का ही निवातस्थ दीप के ज्योति के तरह हमेशा प्रवाह कैसे चलता रहेगा चित्त में, इस प्रकार की आशंका हुई। इसका समाधान कर रहे हैं, कहते ये हो सकता है प्रारब्ध का फल भोग करते समय भी ध्यान हो सकता है, ये बता रहे हैं। उसके लिए श्रद्धा अतिरेक होना चाहिए, ये कह रहे हैं कि श्रद्धाति सये सती, ध्यान के प्रति साधन के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा हो आस्था हो तो प्रारब्ध का फलों को भोग भी होता रहेगा और ध्यान भी होता रहेगा, दोनों भी होगा। जैसे जिसको अभिनय करने का, अभिनय करते 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 अभ्यास हो जाता है, कुशल हो जाता है वो करने में, तो जो उसे एक्टिंग करनी है वो करते समय एक वृत्ति उसकी एक्टर की उसमें भी रहती है, अभिनय जिस पात्र का हो रहा है उसमें भी अहम वृत्ति रहती है, और वास्तविक जो व्यवहार में वो है उसका भी उसे स्मरण रहता है कि नहीं, उसे भूल जाता है क्या। तो अभिनेता अपने व्यावहारिक वास्तविक स्वरूप को भूले बिना भी ऐसा अभिनय करता है कि आपको वो अभिनय कभी कभी रुलाता भी है, सिनेमा देखते समय रुलाता है कि नहीं रुलाता, लेकिन वो अपनी वास्तविकता को नहीं भूलता, वो उस समय वो अभिनय भी कर रहा है तो उसकी अहंता दोनों को भी पकड़ी हुई है, वास्तविक उसके स्वरूप को भी और फिल्म में जो अभिनय कर रहा है जिस पात्र का उसको भी। जैसे ऐसे ध्याता को भी अपनी अहम वृत्ति से असंग अभोक्ता ब्रह्म को भी पकड़े रखना है और प्रारब्ध का फलोपभोग भी होता रहेगा, जैसे उससे अभिनय भी होता रहता है और मूल स्वरूप को भी उसकी अहम वृत्ति पकड़ी हुई रहती है, वैसा करना है, सावधानी रखनी है, ये यहां पर बता रहे हैं। ये हम लोग कल देखेंगे 83वें श्लोक को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही।